अध्याय 13। जापान द्वारा पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी प्रशांत प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न अगस्त 1937 से 1945 तक। चीन और जापान के बीच कई वर्षों से जिस भीषण संघर्ष की आशंका थी, वह सन 1937 की ग्रीष्म ऋतु में युद्ध के रूप में भड़क उठा। यह युद्ध 1931 से 32 में जापान के मांचुकुओ की स्थापना के साथ जो तीव्र संघर्ष छिड़ा था, वस्तुतः उसका ही एक विस्तार था। यदि इससे भी पीछे की ओर दृष्टिपात करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि जापान की यह उस विस्तारवादी नीति का ही अंश था जिसका आरंभ 1870 से 80 में हुआ था, और जब जापान ने अपने साम्राज्य का नियंत्रण क्यूराइल, रिव्यू तथा बोनिन द्वीपों तक बढ़ा लिया था। इस विस्तारवादी प्रवृत्ति ने ही जापान को कोरिया के प्रदेश में प्रविष्ट होने के लिए प्रवृत्त किया। इसी प्रवृत्ति ने 1894 से 95 के चीन जापान युद्ध के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और फार्मोसा तथा पैस्का दोरीज को जापान में मिलाकर चीन को कोरिया से बाहर किया। यह प्रवृत्ति 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध तक बनी रही, जिसके फलस्वरूप जापान को दक्षिणी मंचूरिया में अपने पैर जमाने, कारापुतो को दक्षिणी भाग पर अधिकार करने तथा कोरिया को अपने साम्राज्य में समाविष्ट करने में सफलता मिली। 1914 से 18 के विश्व युद्ध में तथा इसके बाद चीन, साइबेरिया तथा प्रशांत के क्षेत्र में जापान ने और अधिक प्रादेशिक विस्तार के अवसर खोजने की कोशिश की। इस युद्ध की समाप्ति पर जापान को मैरियाना, कैरोलाइन और मार्शल द्वीप समूहों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इनके द्वारा जापान पश्चिमी प्रशांत प्रदेश पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था और समुद्री आक्रमण से अपनी रक्षा भी कर सकता था। पेरी के आगमन से पूर्व भी जापान में कुछ ऐसे लोग थे जो साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखते थे। राष्ट्र के आंतरिक परिवर्तन काल में कुछ लोग जापान की विदेश नीति को अधिक प्रभावशाली बनाने के पक्ष में थे, तथा वे अपने मन में जापानी साम्राज्य का एक चित्र संजोए थे। लेकिन जापान पर हमेशा उनका नियंत्रण नहीं रहा, तथा अन्य जापानियों की दूरदर्शितापूर्ण सलाह ने उनकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई। ऐसा प्रतीत होता था कि यह जापान के लिए अपने आप को सुदूर पूर्व का अधिष्ठाता बनाने का अपूर्व सुयोग था। इस क्षेत्र में एकमात्र वही बड़े पैमाने पर औद्योगिकृत राष्ट्र था। इस प्रदेश के पूर्व एशियाई राष्ट्रों में ही नहीं, बल्कि एशिया के सभी देशों में जापान के पास ही शक्तिशाली स्थल सेना एवं नौसेना थी। जापान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि किसी भी पश्चिमी राष्ट्र के लिए सशस्त्र सेना के साथ वहां पहुंचना कठिन था। अन्य बड़े राष्ट्रों में केवल रूस ही ऐसा राष्ट्र था जो जापान की प्रगति को रोकने में समर्थ था, लेकिन रूस की शक्ति के मुख्य केंद्र वहां से हजारों मील दूर यूरोप तथा पश्चिमी साइबेरिया में अवस्थित थे। वाशिंगटन सम्मेलन में हुए समझौतों से ऐसा प्रतीत होता था कि जापान बाहरी आक्रमण से और भी अधिक सुरक्षित हो गया है। अभी तक चीन की ओर से कोई विशेष खतरा नहीं था, क्योंकि वह इस समय काफी असंगठित था, लेकिन जहां तक देश की एकता एवं रक्षा का संबंध था, वह बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था तथा वह जापान की आक्रामक कार्यवाहियों से घृणा करता था। जापान की सशस्त्र सेनाओं पर जिन लोगों का नियंत्रण था, तथा विशेषतः स्थल सेना के वे लोग जो 1930 से 40 के मंचूरियाई अभियान के लिए उत्तरदायी थे, इस विचार के थे कि चीन की शक्ति संपन्न होने से पूर्व ही उससे निपट लेना उचित होगा, तथा जापान को अपने अधिकृत प्रदेशों का विस्तार कुछ ऐसे ढंग से करना चाहिए कि रूस को उस क्षेत्र से बाहर करने में उसकी स्थिति दृढ़ और निश्चित हो जाए। सन 1936 और 1937 में क्रमशः नाजी जर्मनी तथा फासिस्ट इटली के साथ समझौते के द्वारा जापान को पश्चिमी यूरोप के सबसे अधिक शस्त्र सज्जित तथा आक्रामक राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त हो गया था। वे देश ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी साम्राज्य की लूटपाट में सहर्ष साथ दे सकते थे। जापान के कुछ लोग अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के और अधिक विस्तार का स्वप्न देख रहे थे, और वे दक्षिण पूर्वी एशिया तथा ईस्ट इंडीज को भी अपने अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहते थे। उन्हें इस बात की आशा थी कि वे अमेरिका को किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने पर सहमत कर लेंगे, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि वे बहुत ऊंची बाजी लगा रहे थे, और कुछ अदम्य साहसी तो इससे भी अधिक ऊंची बाजी लगाने को तैयार थे। इस समय उन्होंने अवसरवादिता से काम लिया। उन्होंने कोई भी पूर्व निश्चित कार्यक्रम नहीं तैयार किया। वे घटनाक्रम द्वारा उत्पन्न नई स्थितियों से लाभ उठाना चाहते थे।